ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 36। तो हम लोग क्रम से श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज के द्वारा नृसिंह देव के प्रति की हुई स्तुति पढ़ते आ रहे हैं। अब शुरू शुरू में प्रहलाद महाराज ने तो स्तुति की, भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया, लेकिन स्तुति करते करते ही इतने वो स्तुति में मग्न हो गए कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, उन्होंने उनके उत्पत्ति के ज्ञान को सुना और ब्रह्मा जी को भी देखा कि जब चकित हैं, तो ब्रह्मा जी के इस चकित हुई स्थिति में ही उन्होंने सिद्धांत बोलना शुरू किया है। जो ये श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके 4-5 श्लोक पहले से केवल सिद्धांत ही प्रहलाद जी पेश कर रहे हैं। इस आज के श्लोक से 2-3 श्लोक पहले जब ब्रह्मा जी ने अपने उत्पत्ति का उद्गम स्थान ढूंढना शुरू किए कि मैं कहां से पैदा हुआ, और उस कमल लाल के ऊपर 36,000 साल तक, मतलब हम लोगों के आयु से इतने साल तक उस कमल के डंठल पर ऊपर नीचे देखने का प्रयास किया उन्होंने, किसका आदि और अंतम पता लगाए, लेकिन नहीं लग पाया। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब चतुश्लोकी भगवद गीता भगवान ने जब अर्जुन को सुनाया, वैसे ही चतुश्लोकी भागवत को भगवान ने जब ब्रह्मा जी को सुनाया, तो वह भी उस स्थिति को जान करके ऐसे ही पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, इसलिए वो भी भ्रमित स्थिति में उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया, लेकिन समझ गए। इन सिद्धांतों के निचोड़ में प्रहलाद जी कह रहे हैं इस अध्याय के अंदर कि जब तक जीव इस स्थिति में अपने को न पहुंचा दे कि भगवान सर्वोपरि है और उनकी हमें आराधना करनी चाहिए, तब तक वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। जो भी अभी संसार में कार्य कर रहे हैं उसका एक टारगेट होना चाहिए कि कृष्ण संतुष्टि, कृष्ण को जानना, तब हम लोग समझ पाएंगे इन सिद्धांतों को। आइए हम लोग उस सिद्धांत पर हम लोग पढ़ करके कुछ समझने का प्रयास करते हैं, प्रहलाद जी क्या कहना चाहते हैं। श्लोक संख्या 36 लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, आइए हम लोग पढ़ते हैं। एवं सहस्र बदनं ऋषिराकरो नासाध्य करणनयनाभरणायुधाढ्यम्। मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशम्। दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चिः। बात कृपा करके मैं एक बार ध्यान से पढ़ रहा हूं, सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजार हजार मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, नाकों तथा आंखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों और अधो लोकों तक फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। कृपा करके इस अनुवाद को दोहराइए। तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों हजार मुखों, पांवों, सिरों, हाथों, नाकों तथा आंखों से युक्त देखा। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे। आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों तक फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रभुपाद जी अनुवाद में पहले ही लाइन में लिखते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने आपको हजारों मुखों कानों पांवों मतलब हर अंगों का उल्लेख करते हैं, लेकिन कह रहे हैं ये प्रहलाद जी, लेकिन किसने देखा तो ब्रह्मा जी, क्योंकि जब ब्रह्मा जी कमलनाल के ऊपर इधर उधर भटक रहे थे अपने उद्गम स्थान को ढूंढने के लिए कि मेरा जन्म स्थान कहाँ है, तो वो इस स्थान का पता नहीं लगा पाए। कब वास्तविक में पता लगा पाए कि जब उस स्थिति पर पहुंचे कि अब हम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो उन्होंने भगवान के स्वरूप को ध्यानस्थ किया। इस अध्याय के शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रहलाद जी स्तुति में कहते हैं कि अन्य लोगों ने अन्य प्रकार की स्थितियों से भगवान को प्राप्त करना चाहा, लेकिन किसी को भगवान प्राप्त नहीं हुए। पशु जैसे गजेंद्र हाथी को भगवान ने उसके की द्वारा की हुई भक्ति को स्वीकृत किए। पहले ही प्रहलाद जी संकेत कर दिए कि हम लोग कुछ भी कर्म करें, लेकिन अगर उसका संबंध भगवान से अगर जुड़ा नहीं है तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए पहले लाइन में यहां ब्रह्मा जी की स्थिति को प्रहलाद जी वर्णन करते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने देखा। कब? जब भगवान के स्वरूप के ऊपर उन्होंने अपने ध्यान एकत्रित किया, तब भगवान के विराट स्वरूप उनके मन पटल पर आना शुरू हो गया। क्योंकि जब तक भगवान के स्वरूप को एकत्रित मन से हम लोग उनके स्वरूप को उनके रूप को उनके नाम को अगर हम नहीं लेना शुरू करेंगे, तब तक केवल जिह्वा रूपी कसरत करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि इन सिद्धांतों के परोक्ष में आड़ में प्रहलाद जी यह कहना चाहते हैं कि जब तक एकाकी स्थिति पूर्णता विश्वास अगर भगवान के स्वरूप पर नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम भगवान के भगवत्ता को नहीं जान पाएंगे। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान के आंखों पर मुखों पर जंघों पर एक कौन ध्यान करता है, जो सकार स्वरूप का उपासक होता है वह निर्विशेषवादी निराकारवादी तो ज्योति तक ही बेचारे प्रकाश में भटक करके अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं, और भगवान की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती। प्रभुपाद जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम सकारवादी नहीं बनेंगे और उनके स्वरूप को देखते ही उनकी सेवा करने का हम स्वीकृति प्राप्त अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के भगवत्ता को नहीं जान पाएंगे। सिद्धांत प्रहलाद जी यही दे रहे हैं कि अंततः हमें साकार स्वरूप की स्वीकृति अपने जीवन में धारण करके भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान के स्वरूप का अपने मन पटल पर उनके स्वरूप को हम नहीं स्थापित करते हैं, तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौर निताय की। क्योंकि जब तक देखते हुए उस स्वरूप की छवि को अपने हृदय में हम नहीं स्थापित करते हैं, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रव एव ही केवलम, क्योंकि भगवान को भी देखने की विधि है। अगर भगवान, आप सोचिए, अपने अपने बुद्धि के अनुसार आप लोग अंदाज लगाइए, अगर भगवान को निराकार मान लिए होते तो इतने भागवत और इतने ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी। भगवान यहां रहते हैं, ऐसे इसके साथ रहे, ऐसे उन्होंने क्रीड़ा किया, ये लीला किया, ये दिव्य स्थान है। जब भगवान निराकार ही थे तो ये सब चीजें लिखने की क्या जरूरत थी। बेकार परिश्रम किए वेदव्यास जी। भगवान के स्वरूप को अंतःकरण में स्थापित करने के लिए ही ये दिव्य ग्रंथ है, जो हमारे मन पटल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखित कर देते हैं कि नहीं, कृष्ण का स्वरूप साकार स्वरूप है। द्विभुजधारी श्री कृष्ण ही सबके परम प्रिय हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं, जो कुछ भी संबंध है वही है। इन ग्रंथों की रचना के माध्यम से यही सिद्धांत अकाट्य दी गई है कि भगवान के साकार स्वरूप ही पूजनीय है। जब ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि के उत्स पहले जीव हैं, प्रथम जीव जिनको प्रपितामह कहा गया है गीता के अंदर, जब वो अपनी स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं, तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करके उनके स्वरूप को हम प्रतिदिन अपने हृदय में स्थापित करके अगर हम उनको देखने का प्रयास, उनसे प्रार्थना करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हम तुच्छ जीव कैसे उनको समझ पाएंगे। इस संसार में देखा जाता है कि किसी को खुश करने के लिए कितना प्रयास किया जाता है, तो भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए भागवतमयी प्रार्थना हमें स्वीकार करना पड़ेगा अपने जीवन में, तब हमें भगवान को हम समझ पाएंगे। आप सोचिए कि प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं कि पहले ही प्रार्थना के कुछ श्लोकों को उन्होंने दिया, बीच में कुछ उन्होंने कठिन सिद्धांत प्रवेश करा रहे हैं और बाद में भी इस निचोड़ पर पहुंचा देंगे कि भगवान के स्वरूप को भजना ही जीव का एक असली स्वरूप है और कुछ नहीं है। क्योंकि प्रहलाद जी भक्ति के थर्मामीटर कहे जाते हैं। मेरे महाराज जी कई बार भागवत सप्ताह में कई बार निराकारवादियों पर झाड़ू लगाते हैं कि निराकारवादी वास्तव में आलस्यवाद का प्रचार करते हैं और भगवान का सेवा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं कि निराकार हैं, उनको कुछ देने, उनको कुछ खिलाने और उनकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचिए, जब तक प्रेम कब बढ़ता है, प्रेम तब बढ़ता है जब ददाति प्रतिग्रहणाति होती है, कुछ लेना और कुछ देना होता है, कुछ सुनना और सुनाना होता है। अगर एक व्यक्ति को केवल आप अपना ही सुनाते जाइए और उसके वाक्यों को न सुनिए, तो व्यक्ति निठल्ले एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा कि ये केवल अपना ही सुनाता रहता है, हमारा सुनता ही नहीं, तो छोड़ देगा। यह स्थिति है भक्ति में भी। भगवान के भगवान जिन भी भक्तों के समक्ष अपने असली स्वरूप को प्रकट किया तो उस संसारिकता को भूल करके वो भक्त भगवान का ही हो गया। प्रहलाद महाराज भी इसी अध्याय के अंदर बताएंगे आगे, इसे अगले वाले श्लोकों में कई श्लोकों में उन्होंने कहा है कि भगवान मैंने देखा सारे ऐश्वर्य मेरे पिता के पास था लेकिन आपने उसको कैसे मारा, सारे देवता उसकी भौवे केवल टाइट करने से सारे कांप जाते थे लेकिन ऐसे भौतिक शक्तिशाली व्यक्ति को आपने कैसे मारा, मैंने देख लिया। इसलिए इस प्रकार के आश्चर्य हमें नहीं चाहिए कि हमारी भी इस प्रकार की गति होवे। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो लेकिन भक्ति के बिना, भगवान के कृपा के बिना और कुछ नहीं है। इसलिए आज के श्लोकों के भावार्थ को समझते हुए हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाए। जब ब्रह्मा जी ढूंढ लिए अपने जन्म स्थान को पता नहीं लगा पाए तब भगवान के स्वरूप पर उन्होंने अपना ध्यान एकत्रित किया। भगवत गीता चतुश्लोकी, भागवतम चतुश्लोकी, चार श्लोक में पूरे भागवत और चार श्लोक में पूरे भगवत गीता, इन चारों श्लोकों को अगर ठीक से पढ़ेंगे और इनके अनुवाद को, और भगवत गीता में खास करके प्रभुपाद जी ने जो दसवें अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोक का तात्पर्य लिखा है, अगर उन श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को कोई व्यक्ति ध्यान से पढ़े तो उसके मन से ये धारणा हट जाएगा कि हमें निराकार ब्रह्म के भी प्रति हमारा झुकाव होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन जी भी भगवान के कृष्ण श्रोता और सखा थे, नित्य पार्षद थे। तब भगवान ने चार श्लोक सुनाया भगवत गीता का, तब 11 श्लोक समाप्त होते ही 12वें श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धामम, मतलब हे कृष्ण अब मैं समझा आपके साथ क्या क्या बर्ताव करता था लेकिन अब मैं समझ पाया कि आप अपने वास्तविक स्थिति में आप क्या हैं। जब तक कोई किसी चीज की वैल्यू को नहीं जानता है, उसकी कीमत को नहीं जानता है, तब तक उसके साथ साधारण व्यवहार करता है। वैसे ही ब्रह्मा जी को भगवान ने जब चार भागवत का श्लोक सुनाया तो उनको यह आभास हुआ कि इन श्लोकों की स्थिति को मैं तब समझ पाऊंगा बोलने वाला जब हमें समझाने की कृपा करेगा। तब क्योंकि किसी से कुछ अगर ज्ञान की बातें करनी है, प्रेम की बातें करनी है तो सीखने के लिए हमें नम्र और अपने को मतलब निजी स्थिति में लाना पड़े। प्रहलाद महाराज जी अध्याय के अंदर बार बार कहते हैं नृसिंह देव से कि हे प्रभु आपके इस स्वरूप का चिंतन लोग भविष्य में करेंगे, इस स्वरूप का ध्यान भविष्य में करेंगे और मैं यह जानता हूं कि यह जो आपका स्वरूप जो हमारे समक्ष आपने प्रकट किया है यह केवल जीवों के कल्याण हेतु आपने यह स्वरूप धारण किया है। क्योंकि प्रहलाद जी के समक्ष ही घटना हुआ है, सब लोग मिलकर के उनको तंग करना चाह रहे थे लेकिन अकेला प्रहलाद जी ने सबको अपने पीछे कर दिया। यहां तक कि भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि नहीं यही हमारा सच्चा भक्त है। भक्ति के समक्ष भगवान को भी झुकना पड़ता है। अजीतो भी जीता, भगवान को कहा गया है कि जो किसी के द्वारा भी कभी भी नहीं जीते जा सकते लेकिन भक्त के द्वारा जीते जाते हैं, भक्ति के द्वारा जीते जा सकते हैं। भक्ति सर्वसमर्थ हथियार है, शस्त्र है। जब ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देखे तो उनका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ना शुरू हुआ। वैसे ही अगर हम लोग अपने भक्ति को अगर उत्तरोत्तर वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रतिदिन नियमित रूप से भागवत में केवल स्तुति है। जो स्तुति जिस भक्त को प्रसन्न हो, जो पसंद आए, या उसके स्वार्थ सिद्धि हेतु हो, उसी को तो अपने जीवन में उतारे। उसके स्वार्थ की पूर्ति करते हुए भगवान अपने को प्राप्ति करा देंगे उस भक्त को। ध्रुव महाराज बोल लीजिए किस उद्देश्य से उन्होंने भक्ति किया, बाप से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए, बाप से भी ऊंचा राज्य प्राप्ति करने के लिए उन्होंने 6 महीना इतना कठिन तपस्या किया। टारगेट केवल हो हमें भगवान से प्रेम करने का, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर कुछ नियमित रूप से हम अपने जीवन में स्वीकृति कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं स्तुति को, और प्रतिदिन पाठ करते हैं कि नहीं एक दिन भगवान कृपा करेंगे तो निश्चित कृपा करेंगे। लेकिन नियम तो बनाए, और यह बात हमेशा किसी भी भक्त को ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञानी बनने से भगवान किसी को नहीं मिले। ज्ञान की पोथी यही पड़ी रह जाएगी लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिल पाएगा। मैं पढ़ रहा था उद्धव संदेश। सर्वप्रथम जब भगवान उद्धव जी को भेजना चाहते थे गोपियों के वियोग को दूर करने के लिए, तो भगवान ने चाहा कि यह मेरा उपांग स्वरूप है, अर्थात उपांग शब्द का अर्थ है कि मेरे जैसा ही स्वरूप को इसने प्राप्त किया है, और मैं इसको भेजूंगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रियजन गोपीजनों के सुख को यह दूर कर देगा। इसलिए भगवान ने पहले प्रेम का ज्ञान उद्धव को शुरुआत में दिया। गोकुल की लीला को भगवान ने सुनाना शुरू किया उद्धव को कि हे उद्धव, मैं गोकुल में रहा तो गोकुल जैसी नगरी मुझे देखने को नहीं मिला, यशोदा जैसी माँ हमें देखने को कहीं नहीं मिली, नंद जैसे तात हमें कहीं नहीं मिले, और वहां जैसे माखन रोटी मुझको कहीं नहीं मिला। और मैं वैसे नगरी को छोड़ करके इस कंचन रूपी मथुरा नगरी में आया, मुझे पछतावा हो रहा है। भगवान पछता रहे, और उधर से इसके पीछे कारण भगवान का सुनाने का यह है कि उन ब्रजवासियों के प्रेम के प्रति उद्धव की भाव की जागृति हुई। लेकिन उद्धव जी इस बात को सुने तो हल्का सा मुस्कुराए, भगवान समझे। फिर इस स्थिति को बताने के बाद भगवान ने दूसरा स्टेप रखा कि हे उद्धव, राधा जैसी प्रेम करने वाली और गोपियों जैसी सेवा करने वाली कोई भी आज तक हमारा भक्त नहीं हुआ, और इनके जैसा परम त्यागी भक्त भी कोई नहीं हुआ मेरे लिए। जितना इन लोगों ने जितना त्याग किया उतना कोई नहीं किया। उद्धव का माइंड चकरा गया, बुद्धि चकराना शुरू हो गई कि पता नहीं एक निठल्ले ब्रजवासी जो अनपढ़ गंवार लोग हैं उनकी संगति छोड़ने के बाद इनको इतनी पछतावा हो रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया। भगवान सर्व अंतर्जामी है, इस बात को समझ गए कि उद्धव इस तरह समझने वाला नहीं है। उद्धव ने लास्ट में बात छेड़ी दिया कि रे ये तो भौतिक लोग हैं, इनसे संबंध स्थापित करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप परम ब्रह्म की चिंतन करो। भगवान जो परम ब्रह्म सच्चात है उनको उद्धव जी कह रहे हैं कि आप उनकी चिंतन करो। भगवान ने कहा कि नहीं, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं, अब इसको भेज देना चाहिए, वही इसकी धुलाई होगी। और वही वही चीज जैसे भगवान को संकेत कर रहे थे उद्धव जी, वो चीज वहां जाकर के गोपियों के समक्ष रखना शुरू किए कि गोपियों ने कहा हे उद्धव ये बंद करो बकवास, तुम्हारे ब्रह्म और तेरे निराकार किस देश का वासी है, हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तुम्हारे निर्विशेष ब्रह्म का कौन माँ है कौन बाप है कुछ पता नहीं है, इसलिए यह उपदेश हम लोगों को मत सुनाओ, बस हम जहां है वहीं रहने दो। कहने का तात्पर्य है कि जब तक भक्ति वही स्थिति में हम लोग प्रेम की स्वरूप को उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेंगे और वैसे प्रेमी भक्तों की संगति नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान जो है शुष्क है, इससे भक्ति नहीं मिलने वाली है, भगवान का प्रेम नहीं मिलने वाला है। और प्रेम के कारण ही भगवान जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वो कृपा कर सकते हैं। ज्ञान के बल पर आज तक कोई उदाहरण आप लोग अगर बता सकते हैं जानते हो तो शायद, मैं तो नहीं जानता हूं, आप लोग अगर जानते हो तो उदाहरण बता सकते हैं कि ज्ञान से किसने भगवान को प्राप्त किया। क्योंकि ज्ञान शुष्क है, ज्ञान से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, सहायता कर सकता है लेकिन वह ज्ञान भगवान का प्रेम नहीं ले सकता। इन सिद्धांतों में एकदम स्वर्ण अक्षरों में प्रहलाद जी लिखते हैं कि जब तक कृष्ण के स्वरूप का चिंतन नहीं किया जाता है, उनके साकार स्वरूप को देख करके उनसे निवेदन नहीं किया जाता है, उनसे प्रार्थना नहीं किया जाता, तब तक सारा उपासना बेकार है। उनका कहने का उद्देश्य यह है। इसलिए इस श्लोक में उस चिंतन को, उस स्वरूप को ब्रह्मा जी अब देखना शुरू कर रहे हैं कि भगवान का विराट स्वरूप, कई आंखें कई जांगे कई हाथें कई नाके कई काने, भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगा। क्योंकि भगवान के स्वरूप को अगर कोई वक्त देखना चाहे तो निश्चित रूप से अपने हृदय में अगर प्रेम रूपी अंजन लगाएगा और अपने आंखों में प्रेम लगा करके देखना चाहेगा तो देख सकता है प्रतिदिन। प्रभुपाद जी से भी किसी ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं, प्रभुपाद जी ने प्रत्यक्ष शब्दों में उत्तर दिया कि मैं रोज देखता हूं तभी तो उनकी सेवा करता हूं, प्रतिदिन मैं भगवान को देखता हूं। देखने की आंखें तो चाहिए, क्योंकि पीछे वाले श्लोकों में हम लोग देख चुके हैं कि सब कुछ भगवान है। प्रहलाद जी बोले कि सब कुछ भगवान है, जहां से हम लोग उत्पत्ति हुई है हम लोग भी छोटे ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन अंततः उस स्थिति को हमें जानने का प्रयास करना है कि जब सबके उत्स केंद्र हो है भंडार हो है तो उनके साकार स्वरूप की उपासना क्यों न की जाए, प्रेम के भंडार को क्यों न लिया जाए। अब सोचिए ब्रह्मा जी जब 100 साल तक दिव्य साल दिव्य 100 वर्षों तक कमल के नाल पर ऊपर नीचे करते रहे और नहीं जान पाए तो हम लोग 60 साल की उम्र में कितना जान पाएंगे। कुछ जानने का प्रयास न करें, असली तत्व को हम लोग पकड़ने का प्रयास करें कि कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप कृष्ण लीला कृष्ण कथा ही हमारे जीवन का सार, तब हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और ये कैसे कर लिए हमारे जैसे हैं, अगर साधारण तौर पर अगर हम उनके विषय में सोचने का प्रयास करेंगे तो हम उनको नहीं जान पाएंगे। आप भली भांति वस्त्र धारण किए थे और नाना प्रकार के आभूषणों तथा आयुधों से सुशोभित थे, आपको विष्णु रूप में देखकर तथा आपके दिव्य लक्षणों एवं अधोलोकों तक फैले हुए आपके चरणों को देखकर ब्रह्मा जी को दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। आप सोचिए जब प्रथम प्रपितामह जगत धाता जिनको कहा जाता है वो भगवान के इस स्वरूप को देख करके आनंद की अनुभूति करते हैं तो वैसे मूर्ख जो भगवान को निराकार कहते हैं उनको ये आनंद कहां मिलेगा? जो भगवान के स्वरूप को ही मिटा देते हैं, जो भगवान के स्वरूप को ही नहीं देख पाते हैं, वो भगवान के प्रेम को कहां से प्राप्त कर पाए? अब सोचिए, प्रथम जीव भगवान के स्वरूप को देख करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और उनके हर अंगों को ध्यान से देख रहे हैं, और इस संसार के तुच्छ जीव कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं, अरे किसने भगवान को देखा है? अरे तू अपने को ही नहीं देख पा रहा है तो भगवान को कहां देख पाएगा? अपने को तो ढूंढो कि तुम कौन हो, कहां से आया, क्या करना है, तब समझ पाओगे कि भगवान कहां रहते हैं, क्या करते हैं। अब तात्पर्य में सुनिए, प्रभुपाद जी क्या हम लोगों को समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज की भाषा को इस तात्पर्य के अंदर समझा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि परम शुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी भगवान को उनके मूल विष्णु रूप में देख सके, जिनके हजारों मुख तथा रूप थे। जब हम संसारिक धरातल से अपने को ऊपर उठा लेंगे तब भगवान के असली स्वरूप को हम देख पाएंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषंतम हम भजामि। प्रेम रूपी जब हम अंजन लगाते हैं तो कृष्ण हमें सर्वत्र नजर आते हैं। भागवत में देखने की विधि बताई है, नव योगेश्वरों ने 11वें स्कंद में बताया है कि जब हम उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जब हमें भक्ति की कुछ शुद्धता प्राप्त हो जाती है, तो हम सभी जीवों में कणकण में सर्वत्र हम भगवान को देख पाते हैं। आप सोचिए कि जो सब में भगवान को देखेगा, निश्चित रूप से उसके हृदय के अंदर दया आएगी। यह नहीं कि बकरा हमारे खाने के लिए है, उसके अंदर कोई जीव नहीं है, मुर्गा हमें खाने के लिए, उसके अंदर जीव नहीं है। सब में भगवान नजर आएंगे तो निश्चित रूप से उसके हृदय में दया की अनुभूति होगी, दया प्रकट होगी। लेकिन जो भगवान को देखने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर दया कहां से आएगी? इसलिए सर्वत्र देखने का प्रयास करें। निमि महाराज ने कहा है भागवत के 11वें स्कंद के अंदर कि जब भक्ति की शुद्धता को प्राप्त जीव कर लेता है तो सभी जीवों में भगवान को देखता है और भगवान में सारे जीवों को देखता है। यह देखने की पद्धति है, यह देखने का तरीका है। जब हम शुद्धता को प्राप्ति नहीं किए तो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, रावण और कंस की तरह कुछ भी कर सकते हैं। वो आसुरी प्रवृत्ति की बढ़ोतरी हम न करें, भगवान के स्वरूप को देखने का प्रयास करें और उस स्थिति में अपने को लाने का प्रयास करें। यह विधि आत्म साक्षात्कार कहलाती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवत शुद्धि को प्राप्त कर लेता है, सब में भगवान को देखता है और भगवान को जो देखने का प्रयास करता है, उनके रूप का चिंतन करने का जो प्रयास करता है, यह आध्यात्मिक या आत्म साक्षात्कार की पद्धति कहलाती है। यह नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान एक शून्य है, इन विचारों में अपने को नहीं फंसाना चाहिए। वही द्विभिजधारी वंशीधारी भगवान श्री राधा और कृष्ण की चिंतन अपने हृदय में, उनके उस स्वरूप को अपने हृदय रूपी बर्तन में रख करके, अल्टर बना करके अपने हृदय के अंदर उनको धारण करके उनको देखते रहना चाहिए, उनका चिंतन करता रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर राधा कृष्ण के स्वरूप को नहीं स्थापित करेंगे, तब तक हम उनको उस रूप में उनकी स्तुति और प्रार्थना नहीं कर पाएंगे और उनके भक्ति को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मौलिक साक्षात्कार भगवान के निर्विशेष तेज का दर्शन नहीं, अपितु भगवान के दिव्य रूप का साक्षात दर्शन है। जैसा कि यहाँ उल्लेख हुआ है, ब्रह्मा जी ने भगवान को महापुरुष के रूप में देखा, अर्जुन ने भी कृष्ण को इसी रूप में देखा था। भगवत गीता का 10वां अध्याय का 8 श्लोक पढ़िए, उनके अनुवाद को तात्पर्य को पढ़िए। जब चतुर्श्लोकी भगवत गीता को अर्जुन ने 4 श्लोक में सुन लिए तो समझ गए भगवान की भगवत्ता को, स्वयं उन्होंने सिद्ध करना अपने आप अर्जुन जी कहना शुरू कर दिया कि आप ही परम ईश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं, आप ही सब कुछ है। अर्जुन जी ने सब कह दिया और प्रमाण भी देते हैं अर्जुन जी की, मैं ही नहीं कह रहा हूं, नारद असित देवल ऋषियों का नाम रखते हैं कि इन ऋषियों ने भी आपकी भगवत्ता को सिद्ध किया है कि आप ही सब कुछ है। सुनना, आप देख लीजिए सुनना कितना महत्वपूर्ण है कि सुनने के बाद ही हम लोग भगवान के भगवत्ता को समझ पाए। अतः उसने भगवान से कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। आप परम ब्रह्म परम धाम पवित्र करने वाले परम सत्य नित्य दैवी पुरुष हैं, भगवान परम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे कोई श्रेष्ठ हुआ है न होगा न होने वाला है। पुरुषम शाश्वतम शाश्वत परम भोक्ता है, ऐसा नहीं है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करता है, अपितु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के परम रूप का उद्भास है। ब्रह्मा शुद्ध होने पर भगवान के परम रूप को देख पाए, निर्विशेष ब्रह्म के सिर पांव हाथ नाक कान नहीं हो सकते, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि भगवान के रूप के लक्षण नहीं है। जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करता है, उनका चिंतन करता है, उसे भगवान का आंख नाक हाथ पांव कहां दिखाई देगा, वो किसका चिंतन करेगा। मायामय शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। यह नहीं कि भगवान नहीं है इसको स्थापित करना, मायामय शब्द का अर्थ है कि भगवान ही सब कुछ है, इस स्थिति में अपने को पहुंचा देना, यह निर्णय ले लेना कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो आजकल के पढ़े लिखे व्यक्तियों के ऊपर चकित होता हूं, कभी कभी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है कि भगवान हमारे साथ बुरा करता है। अरे पागल, अगर भगवान तुम्हारे साथ बुरा करना चाहे तो भलाई करने वाला और कौन है, ये तो कोई किसी का नाम बता कि भला, भगवान से भला करने वाला और कोई है। भगवान किसी की भी बुराई नहीं करते, किसी की भी अपनी कृपा को देने के अलावा भगवान के पास और कोई मतलब रास्ता ही नहीं। भगवान किसी का नहीं बिगाड़ते, भगवान सबका बनाते हैं। कोई उदाहरण नहीं कोई दे सकता, शास्त्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, आज तक तो मैंने नहीं पढ़ा कि भगवान ने किसी का बिगाड़ा। अगर वो बिगाड़ना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर के किसको बना पाएगी, वो किसी का नहीं बिगाड़ते। इसकी व्याख्या माधवाचार्य ने की है कि मायामयम ज्ञान स्वरूप है, भगवान के रूप को बताने वाले इस मायामय शब्द का अर्थ मोह नहीं लेना चाहिए। प्रत्येक भगवत रूप वास्तविक है और इस रूप का दर्शन पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। बहुना जन्मनानन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते। ज्ञानवान शब्द का अर्थ ऐसा भक्ति से जिस पूर्ण ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है और इसलिए वह उनकी शरण में जाता है। मुख नाक कान आदि प्रतीतों द्वारा व्यक्त भगवान नित्य हैं, ऐसे रूप के बिना कोई आनंदमय नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप को देखने के बिना क्या आनंद आएगा, आप सोचिए। भगवान आज भी ब्रज के अंदर लीला स्थली को छोड़ करके गए हैं और उस ब्रज के अंदर भगवान आज भी विराजमान है। उस स्थान पर जाने के बाद भी क्या आनंद की अनुभूति होती है, अपने शुद्ध भक्तों को प्रत्यक्ष दिखते हैं अपने धाम में, उनसे प्रत्यक्ष रूप से बात करते हुए नजर आते हैं भक्त लोग। अरे दूर की बात तो जाने की नहीं, हमारे यहाँ हम लोग यहाँ इस मंदिर में भी महाराज जी हैं, भक्ति माधव जी महाराज, मैंने खुद देखा है अपने शालिग्राम भगवान से पता नहीं बात करते रहते हैं, जगन्नाथ जी से कुछ कहते रहते हैं। क्योंकि जिसने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया है, उनसे सलाह लेता है, उनसे बात करता है, उनको सब कुछ उनसे वो करता है, क्योंकि वैसे शुद्ध भक्तों के लिए सब कुछ भगवान ही है। बुरा हूं भला हूं लेकिन मैं आपका हूं, हे ठाकुर आप मुझे मत छोड़ना। अगर हम इस प्रकार की प्रार्थना करें तो भगवान कृष्ण छोड़ना नहीं जानते हैं। कई टीकाकार ने कई श्लोकों के टीका पर अपना अपना विचार दिया है, भगवान टेढ़े हैं जो भगवान श्री कृष्ण, वो केवल किसी अपने भक्त को प्रेम में फंसाने के लिए, एक बार फंस गया उस टेढ़ेपन में तो निकल नहीं पाएगा, वो भक्ति छोड़ करके भी जाना चाहेगा तो भगवान कृष्ण उस भक्त को छोड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना तो जानते नहीं। अब भगवान के स्वरूप को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उनकी अनुभूति कर सकते हैं, तो माधवाचार्य जी एक श्लोक देते हैं कि गंधाख्याम देवता जगत पृथ्वी व्याप्ति सति एवं व्याप्तम जगत विष्णु ब्रह्म अस्तम ददर्श। अगर भगवान को देखना है तो हम कैसे देखें, तो ब्रह्मा ने देख जिस प्रकार देखा उस प्रकार हमें देखने का प्रयास किया। ब्रह्मा ने देखा कि जिस प्रकार सुगंधियां तथा रंग सारी पृथ्वी में व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान सूक्ष्म रूप में विराट विश्व में व्याप्त है। पृथ्वी में कौन सा रंग नहीं है, आप सोचिए, हम लोग पौधा लगाते हैं तो वृक्ष हरा भरा होकर के निकलता है, लेकिन उसी वृक्ष से वृक्ष में जो फल लगता है उसका रंग अलग अलग हो जाता है, फूल का रंग अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब कि वो रंग भगवान ने इस पृथ्वी के अंदर भर करके रखा है, अर्थात वो रंग इस पृथ्वी के अंदर विद्यमान है, व्याप्त है। वैसे ही उसी स्वरूप में भगवान को देखो कि भगवान हर चीज में, हर स्थिति में, हर जगह व्याप्त है, उसकी अनुभूति इस प्रकार आप कर सकते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। को कवि वर्णन कर सके ब्रज के रज की मूल, जाके कणकण में बसे जुगल चरण की धूल। अगर इस प्रकार की भाव होगी तो हमें सर्वत्र भगवान नजर आएगा। कौन वर्णन कर सकता है कि कृष्ण कहां नहीं है, अर्थात भगवान सर्वत्र है। प्रहलाद जी का कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करो, कोई भी स्वरूप ले लो। भगवान गिरवरधारी कहलाते हैं, गिरिराज उठाए हैं तो उस स्वरूप को लो। भगवान किसी असुर का वध कर रहे हैं उस स्वरूप को लो, या जमुना जी में स्नान कर रहे हैं उस स्वरूप को लो। किसी भी स्वरूप को लेकर के, एक स्वरूप को लेकर चिंतन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान के स्वरूप ही आप अपने मन पटल पर नहीं लाएंगे तो भगवान को कहां से परख पाएंगे, भगवान को कहां से देख पाएंगे। भगवान को समझना बहुत आसान है और भगवान को समझना बहुत मुश्किल भी है, जैसे इन श्लोकों में बताया जा रहा है। भागवत चतुश्लोकी में तीसरे श्लोक में बताया गया है कि जथा महंति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनि प्रविष्टानि प्रविष्टानि न तेषु ततेष्वहम्। भगवान को देखा जाता है कि सब जीवों में प्रवेश करते हैं, लेकिन सब जीवों में प्रवेश करने के बावजूद भी उनसे वो लिप्त नहीं है, उनसे वो अलग है। इसलिए भगवान को सर्वत्र देखने का आसान तरीका है हम अपने मन पटल पर उनके किसी एक स्वरूप को स्थापित करें और उनका चिंतन करें। यह सिद्धांत प्रहलाद जी दे रहे हैं और इस सिद्धांत के पथ पर चलने वाला निश्चित रूप से भगवान की भक्ति कर पाएगा। आगे के कई श्लोकों में स्तुति किए हैं प्रहलाद जी इसी अध्याय के अंदर कि भगवान मैं तो केवल एक चीज आपसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं जी, मुझे एक ही चाहिए कि मेरा मन कभी आपके इस स्वरूप को देखने के अलावा और किसी में फंसे नहीं, यही हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। अपना उदाहरण देते हैं, प्रहलाद जी कई शास्त्रों का उदाहरण भी देते हैं कि एक पुरुष के अंदर कई स्त्रियां हैं तो उसे अपने अपने बेड पर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, उससे भी कई गुना जो हमारा मन है विभिन्न प्रकार के विषयों में भटका हुआ है, विभिन्न प्रकार के विषय को पकड़ रखा है और उसी के चिंतन में हम भटक रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मुझे मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा जो खास करके मन है आपके इस स्वरूप को देखना छोड़ करके और किसी स्वरूप में न लगे। इस प्रकार की एकाकी स्थिति होनी चाहिए। इन दिव्य सिद्धांतों के अंदर यह भाव छिपा हुआ है कि किसी भी तरह से जो हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति का, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण के स्वरूप को देखना, कृष्ण के स्वरूप की सेवा करना, कृष्ण के नाम को लेना और उनके दिव्य लीला स्थली का दर्शन करना और उनके दिव्य भक्तों की संगति में रहना, और कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यही इस श्लोक का भावार्थ है। हरे कृष्ण। कोई एक प्रश्न है तो ले सकते हैं, क्योंकि बोलिए। चार श्लोक में पूरी भागवत है और चार श्लोक में पूरी गीता भी है।
चार श्लोक में इस्कॉन है।
चार अक्षर, चार शब्द नहीं, चार अक्षर के अंदर। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, उपस्थित भक्तवृंद की गौर हरि प्रेमानंद।